October 20th, 2006, Kartik evening class.
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायके कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरव गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय सदभक्ताङ्गश्यामलि सदाय माधुर्यकार दम्बिनी में ग्रंथकार कहते हैं इसमें द्वैत और अद्वैत विषयों का वाद विवाद खंडन मंडन का अवकाश नहीं है। कोई व्यक्ति यदि ईश्वर का विचार जानना चाहे तो उन्होंने ऐश्वर्य कदम्बनी नामक ग्रंथ लिखा है, उसको देखे। इसे मालूम होता है कि ऐश्वर्य कदम्बनी उन्होंने लिखा था, किंतु पता नहीं उसकी कोई भी प्रतिलिपि नहीं मिलती है, कोई भी ऐसा दृश्य नहीं मिलता है। बलदेव विद्याभूषण ने भी एक ऐश्वर्य कादम्बिनी ग्रंथ लिखा है, किंतु वो दूसरे प्रकार का है, इनका नहीं है। अब बतला रहे हैं, पहली दृष्टि में बतलाया भक्ति भगवान की भांति स्व प्रकाश है। भक्ति स्वयं प्रकाश, भक्त्या संजायता भक्ति, मध्यम अधिकारी भक्तों के हृदय से, उनके संग से, उनकी बाणी से भक्ति होती है, किंतु उनके हृदय में रहने वाली भक्ति के द्वार से ही उनके ऊपर में कृपा होती है, उनके हृदय में कृपा उत्पन्न होती है और उस कृपा के कारण उनको भक्ति उनके हृदय में प्रवेश कराते हैं। इस तरह से वर्णन किया गया, बिना भक्ति के कर्म ज्ञान योग तपस्या कोई भी फल नहीं देते, भक्ति के कृपा से ही ये लोग भक्त ये अपने फल देने में समर्थ हैं। ग्रंथकार और चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस ग्रंथ की प्रथम दृष्टि में विविध प्रकार के अकाट्य युक्तियों तर्कों और शास्त्र प्रमाणों के द्वारा भक्ति की स्वतंत्रता स्वप्रकाशिता यही सकल के प्रतिपादन करें। एखन द्वितीय अमृत दृष्टि पे साधक साधन भक्ति के क्रम विकास का वर्णन कर रहे हैं, उनके स्तरों का वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम साधक भक्तों के चित्त में भक्ति कल्पनता के आविर्भाव, उसके गुण और जाति का वर्णन। जिस प्रकार मध्यम भक्तगण साधक भक्त हृदय के कृष्ण सेवा वासना उत्पन्न करे, आखिर उठाते लौकिकी व परमार्थिकी वैधि भक्ति अथवा रगानुगा श्रद्धा उत्पन्न है, ऐसा बुली प्रकार भे परे आर्जिता स्तर आते ऐसा बुली के वर्णन कर रहे। जखन साधक निखिल कृष्णेतर वासना कृष्ण सेवा कृष्ण भक्ति छाड़ा और कोनो रकम हृदय मध्य वासना थाकबे ना, गंध थाकबे ना, और कर्म ज्ञान आदि द्वारा अमिश्र अनाच्छादित शुद्ध भक्ति को शुद्धा भक्ति या उत्तमा भक्ति कहा बतलाया है, जरूर होता है। यहां भक्ति तत्व को भक्ति तत्व के सरल सहज भावे थे शुद्धा भक्ति के कल्प लता उपमा दिया चैतन्य चरितामृत रूप गोस्वामी और महाप्रभु संपादित एक भक्ति कल्प लता होता जे प्रकार कल्पलता पूर्वर क्षेत्र में फैला हो जे खाने से नाना प्रकार एक घास अन्य सब आचे से खाने कल्पलता उत्पन्न हो गए ना जे कामना वासना ऐसा भरपूर अथवा यमन की गंध थाकले भक्ति निष्काम एवं उर्वर क्षेत्र में इति उत्पन्न है। एक आधे प्रश्न होते पड़े, बीज के बिना कभी लता पैदा होती नहीं, इसलिए भक्ति लता का बीज क्या है? लता क्रीपर का बीज होता है, बीज हो भक्ति लता बीज की ब्रह्मांड भरमते करो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। माली भैया से बीज करे आरोपण सौन कीर्तन जले करे कृष्ण भैरमुख जी अपने कर्म के फल से अनादि काल से जब से सृष्टि आरंभ हुई जगत के सृष्टि आरंभ हुई छे नाना प्रकार जोड़ी के भ्रमण कखनो देवता कखनो गंधर्व कखनो शुकर कखनो कुकर कखनो पुत्र नाना रकम आज होच्छे कि आनंद सुख किंतु कोनो जन्मे ते सुख शांति आनंद प्राप्ति होच्छे एखन मनुष्य जन्म भगवान अनुग्रह कर दिए छे जखन महत कृपाजनित सौभाग्य यदि प्राप्त है जखन महत व्यक्ति जार हृदय के भक्ति आचे आ जगते जीवे दुख देखे तखन चित्त द्रवित हुए तखन तारा दे द्वारे द्वारे के लिए प्रति जीवे निकट इते जे आकाशदेव के कृष्ण टीके आकर्षण करवा उन्मुख करवा चेष्टा कर तारा बड़ो दयाल हमी गुरु महाराज के देखे छी की रकम भवते मेदनीपुर 24 परगना दिवारात्र परिश्रम करते एक जोड़ा जूता ओखाने तहार शेष हुई जे कोनो दिन चला फिरा करते हैं आज एक रकम होते माठे 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 हुए तो यही रकम देखा जाए भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद नगर संकीर्तन करे जेखने निजी जेते पार नहीं तार सेवक गण के पाठिए दिए सर्वत्र एक कृष्ण सेवा उपासना जगत के जीवन हृदय के यही जो छे भक्ति लता भी महाप्रभु भक्ति लता के बीज का उल्लेख तो किया किंतु वह बीज क्या है स्पष्ट रूप से नहीं बताया। जीव गोस्वामी ने बताया भवाप वर्गो भ्रमतो जगा जगत जी जगत से भ्रमण करते करते 84 लाख योनि पे भ्रमण करते करते इत्यादि तार्टिका तक पहुंचन की सत्संग में रति अंकुर उपाय मतिर जाए थे इति साधु संगते रति अंकुर स्वरूप मति उत्पन्न यही बच्चे कृष्ण सेवा जन्म महापुरुषों की हैती कृपा से महाजनगण मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी जो है तो मध्यम अधिकारी थे ऐसे तात्पर्य भक्त जीवन पर कृपा कर साधुओं के चित्त में जिस मति के द्वारा भगवत भजन की अर्थात तो कृष्ण सेवा की वासना उत्पन्न कर उसी को भक्ति कल्प लता का बीज कहा सही जो से भक्ति कल्प प्रथम अंकु यही कृष्ण वासना जे सेवा एटा बाहरी रक्षण की हरि गुरु वैष्णव वाक्य थे शास्त्र वाक्य थे श्रद्धा दृढ़ विश्वास कृष्ण भक्ति कहले सर्वका कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा और सब कुछ किया भक्ति नहीं हुआ तो कुछ नहीं। साधकों के इंद्रिय रूपी क्षेत्र में श्रवण कीर्तन जल सिंचित होने पर उसी बीच से भक्ति लजा उत्पन्न किसे मध्यम अधिकारी भागवत चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रामे ग्रामे शहरे शहरे तारा पाठ करे लोग सुने और सुने चित्त आकृष्ट हो जाए तखन आमी हरि नाम ग्रहण करो आमी कृष्ण भक्ति करो कृष्ण सेवा करबो यही बीज उपरूत हो जाए कृष्ण विषय अनुकूल्य संपादन ही भक्ति कल्पलता का मूल है। कृष्ण विषय अनुकूल कृष्ण भक्ति अनुकूल जे आछे जो तो कुछ अनुकूल कोई संपादन आज दृढ़ा जे ताके दृढ़ भाव ते प्रत्याग ऐसी संकल्प हो गए अर्थात कृष्ण अनुकूल्यमयी सेवा तार सुख अथवा तार प्रति आनंद विधानी भक्ति प्राण कृष्ण किसे सुखी हो गए यही ममता युक्त सेवा प्रवृत्ति यही के भक्ति प्राण हो जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में प्रीति संदर्भ में प्रीति के लक्षण में लिखा है विषय रूप अनुकूल या सुख विषाद जिसकी आत्मा या जीवन है विषय वचन प्रेम विषय कृष्ण तार सुख तार अनुकूल की रकम कृष्ण सुख हो गए भक्ति प्राण कोई स्प्रिहा कारण अनुभव हो जाए जिसमें उल्लासमय ज्ञान विशेष उसमें कृष्ण सेवा करके उसके हृदय में उल्लास होता है जयात्मा कृष्ण का कोई भजन करे और वो सुखी न रहे, ऐसा नहीं हो, उसी के द्वारा आत्मा प्रसन्न हो। चाहे लाख संसार का दुख आए उसको स्पर्श नहीं कर सकता और कोई कामना उत्पन्न नहीं करने देगा। तात्पर्य यह है कि प्रेम को आविर्भूत कराने वाली शुद्ध भक्ति की तीन भूमिकाएं हैं। पहला, भक्ति के विषय में कृष्ण को जिससे सुख होता है वही भक्ति का जीवन प्राण है। नंबर एक, अर्थात भक्त के हृदय में कृष्ण की सेवा या सुख साधन का अतिरिक्त और कोई वासना नहीं हो सकती। प्रश्न हो सकता है, भक्त भगवान को पाने के लिए क्यों कामना करता है? अपने सुख के लिए नहीं, सत्संग के द्वारा अपना सुख इत्यादि ये सब कुछ वो दूर हो जाता है, केवल कृष्ण को सुख हो इसी के लिए। दूसरी भूमिका की बात करें, कृष्ण की सेवा करके कृष्ण को सुखी बनाने की गोपियां श्रृंगार करती हैं, किसके लिए करती हैं? कृष्ण के लिए श्रृंगार। इसलिए भक्तों में ये इच्छा उत्पन्न होती है कृष्ण की सेवा करके कृष्ण को ही सुखी करें, मैं सुखी हूं भक्ति बिगड़ गई, इसलिए अपने सुख की कोई कामना नहीं करते। और यदि कोई कामना नहीं होती तो वो सुख नहीं पा सकते, ऐसा होने से भक्ति की दूसरा संता नहीं रहती, क्योंकि सुख से आनंद ही दूसरा। इसके लिए तीसरी कार्य, तीसरी भूमिका की बात करें, भक्तों को अपने लिए सुख की कामना नहीं होने पर भी, यद्यपि भक्त को अपने सुख की कामना नहीं होती, विजय सुख कामना है ना, किंतु कृष्ण की सेवा ही ऐसी है कि कृष्ण का माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य, उनकी सेवा कर अनुभव करके अपने आप आनंद होगा। कृष्ण को देख करके गोपियों का आनंद होगा और गोपियों को देख करके कृष्ण को आनंद है। इस तरह से परस्पर गुड़ागुड़ी चलती है, परस्पर चक्कर चलता है, कोई भी नीचे हारने के लिए प्रस्तुत नहीं होता। ट्रांसलेशन,
हरि ओम गुरवे गौरचंदाय राधिकाय धनाय कृष्णाय कृष्णवाक्य धनवाक्य नमो। Therefore, Sri Vishwanath Chakravarti Thakur says in this book, Srimad Rujikarambini, there is no question of simply dry argument and logic to understand what is Dvaitavad or Dvaitavad. In order to simply understand Bhagavan, we are reading this Mandurja Karambini. So there is another book, Aishwarya Karambini, that is written by Sri Baladev Vidyabhushan, or by Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, but there is no copy available. Therefore, we have established that bhakti, like Bhagavan himself, is independent and self-illuminating. Bhakti, she is achieved by the association of the Madhyam Adhikara Vaishnava. Bhakti Samjatiya Bhakti. Therefore, bhakti which is present in the heart of the Madhyam Adhikari is transferred by his mercy to the heart of the disciple or the sadhak. Therefore, bhakti depends upon herself. We have discussed how without the mercy of Bhakti Devi, the inferior paths like karma, jnana or yoga cannot renew a result independently. Therefore, bhakti is samanta. She is capable of giving any result to anyone. Therefore, in the first section of Madhurya Kadambini, the writer of the book, Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur, has used logic and arguments from Shastra to prove the self, the independent nature of bhakti. And now in the second part of Madhurya Kadambini, there is discussion of sadhana bhakti. Therefore, the sadhak, by taking association of the Madhyam Adhikar, by hearing Hari Katha, bhakti appears in the heart of the devotee. That bhakti, that first round is called Krishna Seva Vasana, the desire to serve Krishna. That Shraddha, or Krishna Seva Vasana, is of two types, Vaidhi Bhakti or Raganug, but Vaidhi Shraddha or Raganug Shraddha. Therefore, the definition of bhakti has been given by Sri Rupa Goswami. Anyavilasita sunyam jnana karmani anabritam anukalena krishnanu shalanam bhakti uttama. Pure bhakti has the symptoms that there will be no other desire except the desire to give happiness to Krishna, and bhakti will not be covered by karma or jnana. Therefore, Suda bhakti, she is like compared to a kalpalata, a wish-fulfilling vine. This has been discussed in Sri Chaitanya Charitamrita by the discussion between Sri Mahaprabhu and Sri Rupa Goswami. But as long as there is some other desire in the heart, then Bhakti Devi cannot sprout. Other desires are compared to be like weeds or grass. Therefore, bhakti is niskam. Her nature is to have no other desire except to please Krishna. Therefore, she sprouts in the heart. Without a seed, how there can be a plant, a kalpalata? Therefore, what is that seed of devotion? It is said in Sri Chaitanya Charitamrita, Brahmande Brahmadikona Bhagavanaji, Guru Krishna Prasadipai Bhakti Lana Beach. Malinhoi se beach, Koriya Ropan, Shravana, Kitana Jal, Koriya Sechan. There are unlimited numbers of jivas in this world who are against Krishna. And since time immemorial, since before the beginning of creation, even the jivatma, the individual soul, out of bewilderment of Maya, is moving through 8,400,000 species of life. Sometimes he becomes a demigod, a Gandharva, a dog, a hog, a worm. But as he is moving, he is looking for one thing, happiness, but he cannot find. Out of mercy, Krishna gives that jivatma the human form of life. And if by good fortune that jivatma can receive Mahatsanga, the association of the pure devotees of the Lord, and by that Mahat Sangha, the Jivatma receives devotion. Therefore, that Mahapurush, the Sadhu, they see the suffering of the Jivas in this world and their heart melts. Therefore, they move door to door, preaching the message of Krishna. He tries really hard to attract the Jivas to the service of the Lord. Like Guruji is saying, like our Param Gurudev, how Gurudev said, I personally saw he would move door to door, picking all that area of Bengal, walking, even three pairs of shoes, he completely finished. So much hard work he did. Therefore, our Prabhupada, Sri Saraswati Thakur, and our Thakur Srila Bhaktivinoda, such hard endeavor they did to preach in performing Nam Sankirtan. And if they could not go personally, then they inspired their servants, their devotees, to go out and preach this Krishna Seva Vasana. All should serve Krishna. Therefore, Sri Jiva Goswami has given some commentary on the Bhagavatam verse, Bhava Bhavago Brahmato Yato Bhavet. He says that the living entity moving through 8,400,000 species of life, they may receive satsanga. In that satsanga, the sprout of rati, or attraction to Krishna, will come in the heart. That sprout is received. Radhya Kurmati means the intelligence to serve Krishna or to be attached to Krishna. That intelligence comes by the mercy of the Madhyam Adhikar Vaishnava. For that Uttam Vaishnava who comes down to the platform of Madhyam Adhika, it is that Vaishnava which inculcates Shraddha in the hearts of all the jivas. Therefore that seed is the desire to serve Krishna, and that plant that grows is called Bhakti Lata. That Shraddha, that first stage of devotion, is externally seen as a fixed faith in the words of Sri Hari, Sri Guru and the Vaishnavas. And also externally it is seen, Krishna Bhakti Koilya Sava Kam Krita Hoy. Externally will be seen as the determination, I will only serve Krishna. I only have to serve, satisfy Him. I do not have to satisfy anyone or anything else in this world. Therefore the sadhak, under the influence of Bhakti Devi, engages his external senses in the process of Shravan, Kirtan, Vishnu, Smaranam. Therefore our Guru Marga, our Guru Parampara, have taken the message of Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charamrita to every city, to every town, and to every village. And by hearing these lectures, people have become inspired. Yes, I must serve Krishna. I must give Him happiness. That Shraddha will give a result also, externally seen. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya vajanam. A fixed determination, a very, very strong desire to accept that which is favorable and to very strongly reject that which is unfavorable to the cultivation of devotion. That Krishna Seva Basna culminates in one thing, how I can make Krishna happy. Therefore the life, the prana of devotion is that mood, how I can make Krishna happy. And that bhakti is to be seen as mamata yukta, endowed with complete feeling of possessiveness towards Krishna and affection. Everything has its symptoms. Therefore that symptom will be, I must give happiness to Prem Visaya Krishna, who is the enjoyer of bhakti. Therefore that bhakti will come in the mind as ulasmoy gyan, knowledge which is full of an eagerness and enthusiasm to serve Krishna and give Him happiness. If we see someone, I'm doing bhajan so much but I'm very unhappy, this is completely absurd. It's impossible. Unhappiness cannot touch someone who is engaged in bhakti. Therefore some questions now come. Is Bhagavan selfish to engage the jivas in his own service? Is the devotee selfish because they desire to escape from unhappiness? Therefore some doubt comes. Therefore the devotee, the sadhak never desires to escape from unhappiness because unhappiness automatically runs away in the association of sadhus. Therefore there is no separate endeavor for the removal of unhappiness. Also, the devotees, especially the gopis, have no desire for their own happiness. When it's seen that there is some attachment to their own bodies or their own happiness, that is really only for the happiness of Krishna. Therefore the gopis, Ateva Gopi Gan Nahi Premaganda, Krishna Sukhi Laga Matra, Krishna Se Sambanda. The gopis, the attachment and the endeavors they perform for their own happiness is actually only for the happiness of Krishna. Therefore, will I try for my own happiness as well as Krishna's happiness? No. One should only try for Krishna's happiness, and all type of happiness runs behind that person. You cannot be a devotee and be unhappy, because all happiness will automatically come. Therefore Krishna is not selfish. When Krishna sees the happiness of the gopis in his seva, then Krishna becomes even more happy. When the gopis sees Krishna's happiness, they become even more happy. Therefore it's like a competition of unselfishness.
Bhakti gambhir tattva arah. এখন খুব গম্ভীর তত্ত্ব যে প্রকার মধুকর ভ্রমর পুষ্পায় মকরন্দ
पान करने के लिए लता का आश्रय करता है। इस प्रकार कृष्ण सेवा अतिरिक्त समस्त प्रकार की कामनाओं वासनाओं से रहित होकर भक्ति रूप भक्त रूप मधुकर प्रेम मकरंद का आस्वादन करिवार जन्न सदैव भक्ति कल्पलता का आश्रय। यहीं पर प्रश्न होता है, भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति सच्चिदानंदमयी है, वह किस प्रकार साधकों के प्रागिक इंद्रियों में आविर्भूत होगी? जड़ और अप्राकृत चेतन में भेद है, चेतन जड़ नहीं हो सकता और जड़ चेतन नहीं होगा, ये बात ठीक है। फिर भक्ति स्वरूप शक्ति सच्चिदानंदमयी और जीव का शरीर जड़ है, इसमें कैसे प्रकट होती है? उसके उत्तर में चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, जैसे स्पर्शमणि लोहे को स्पर्श करते ही क्या बना देती है? स्वर्ण बना। कैसे बन गया? स्पर्शमणि की विशेषता अपनी शक्ति से संचरित होकर लौहत्व को दूर कर और उसको स्वर्ण बना देती है। उसी प्रकार भक्ति भी अपने चिन्मय स्पर्श से साधकों के जड़ इंद्रियों को क्रमशः स्वर्ण की भांति परम विशुद्ध चिन्मय किया करती। भक्ति देवी जीव हृदय के जीव इंद्रिय के प्रकटित है, अतः कृष्णामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखो ही जीववादो स्वयं एवं स्फुरत। कृष्ण नाम आदि श्रवण कीर्तन इत्यादि चिन्मय सेवन मुख वृत्ति हुए यदि केव नाम करे ताले वो चिन्मय श्रवण कीर्तन धारण देते आविर्भूत इंद्रिय से, अर्थात गुरु प्रदर्शन एवं तत्पश्चात दीक्षा और भजन क्रिया के साथ में अनर्थ दूर होने लगता है। सती सती जो चाहते हैं उनका, इसके लिए जो साधन करते हैं शुद्ध रूप में, जरा शुद्ध शुद्ध साधन करे ताजे, आ जरा साधन करे ना विषय के न तखन साधक के जड़ इंद्रिय थे भक्ति की अलौकिक प्रक्रिया सूत्रपात होता है, तखन क्रिया आरंभ है भक्ति। जैसे जैसे श्रवण कीर्तन करता जाएगा अनुष्ठान, ततो ततो भगवान की भांति सच्चिदानंदमय स्वप्रकाश तो भक्ति साधकों के जड़ हृदय में प्रादुर्भूत होकर के ज्वलंत आग में लोहे की टुकड़े की भांति तदात्म होकर चिन्मय बना दे। कृष्ण भक्ति बृहद भागवतामृत में कह रहे हैं क्या, रति के स्तर पर जब साधक पहुंचता है भाव अवस्था में, रति की अवस्था में साधक का मन बुद्धि अंतर इंद्रिय प्रेम के स्तर में यथावस्थित पांच भौतिक देह क्रमशः दूर होकर के चिन्मय शरीर प्रकट होता है। कृष्ण भक्ति सुधा पान देह दय विस्मिते तेषां भौतिक देहे अपि सच्चिदानंद रूपता। अर्थात कृष्ण भक्ति रूप अमृत का पान करके जो लोग देह और दह सब कुछ भूल गए हैं उनका पांच भौतिक शरीर क्रमशः दूर हो जाता है और सच्चिदानंदमय शरीर प्रकट हो जाता है। प्रमुख है वैष्णव देह प्राकृत कबूल, अपराकृत देह देह कृष्ण भक्ते चिदानंदमय दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण सही काले कृष्ण तारे करे सही देह तार करे चिदानंदमय अप्राकृत देह तार चरण এখন তো এই বিচার হলো, কিন্তু গুরু মহারাজের মুখেতে অনেক বিচারের বিষয়ে শোনা হয়েছে। আমি বলেছি এ সম্বন্ধে, জীবে একটি স্বরূপানুবন্ধী পরম সুন্দর চিন্ময় দেহ আছে সচিদানন্দময়ী, তাহলে এই শরীর যে দাড়ি গোপ পাকা বৃদ্ধ রোগ জর্জর এর কি দরকার আছে যে চিন্ময় হয়ে যায়? এই চিন্ময় শরীরেটা কি যাবে? যেতে পারে না। তাহলে সামঞ্জস্য কিরকম হবে? এই সামঞ্জস্য কত? এই শরীর চিন্ময় হবে না, কিন্তু বৈষ্ণব শরীরকে চিন্ময়ী মানতে হবে, গুরুদেবের দেহকে চিন্ময় মানতে হবে। বলছেন নারদ ঋষি ভজন করতে 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 ভগবানের দর্শন ছাড়ে জন্ম পেয়েছেন, তারপরে ভগবান অন্তর ধ্যান হয়ে গেলেন, তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে গেলেন ভগবত দর্শনে, আকাশ বাড়ি হোক চিন্তা করো না, এই শরীরে আর ভগবত দর্শন হবে না, ভজন কর, সময় আসলে ভক্তি দেবী প্রবল হয়ে তুমি এই শরীরকে ছেড়ে দিয়ে আবার ফ্রামেতে আসবে। তখন মাঝে নেপত পাঞ্চ ভক্ত কি তার এই শরীরই যদি চিন্ময় হয়ে যেত তাহলে এই শরীরে তো চলে যেতে, কিন্তু তা নয়, অলক্ষিত ভাবেতে যখন সময় আসলো ভজন করতে 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 এবং প্রতাস প্রিয় নাম কর্তা এই স্থিতিতে পৌঁছে তখন সময় আসলে তিনি কালের মস্তকেতে পায়ে রেখে নেপথ্য পঞ্চ ভৌতিক এই পঞ্চ ভৌতিক শরীর তাহার নিপতিত হল, আর তাহার বদলে কি হল চিন্ময় পরম সুন্দর সচিদানন্দময় স্বরূপ তাহার প্রকটিত হল। আর তখন তিনি গোলোক বৃন্দাবন নারায়ণ লোকেতে সর্বত্র এই লোকেতে তিনি ভ্রমণ করবার জন্য। এখন কথা হচ্ছে ভক্তি হল দীক্ষা কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ, আত্মসমর্পণ হয় দীক্ষা কালে আমাদের, আমাদের দীক্ষা এটা পারমার্থিকই নয় আনুষ্ঠানিক, জৈন ধর্মেতে দিয়াছে জয় বিজয় আর প্রজনার্থে যবে দীক্ষা হলো একেবারে মূর্ছিত হয়ে গেল। আর দেখেন কি অপ্রাকৃত অবস্থা সত্যি দর্শন করতে নাই, আমাদের আমাদের দীক্ষাতে আনুষ্ঠানিক, ওই দীক্ষাতে পারমার্থিক দীক্ষাতে অধিকার দেবার, যখন ওটা হয়ে যাবে তখন রতি অবস্থাতে উপস্থিত হবে, তখন এই শরীরটাকে তাকে অপ্রাকৃত মনে করলেও গুরুদেবের খাড়াও কাজ, কিন্তু ব্যবহার করে তাকে অপরাধিক মনে করা, নচেত পরমার্থের গতি হবে না। এই জন্য হয় কি যখন তাহার কাল উপস্থিত হয় মৃত্যু তখন অলক্ষিক ভাবে তখন এক সেকেন্ডও লাগে না, তখন কি হয় এই পাঁচ ভৌতিক শরীর দূর হয়ে যায়, আর তাহার চিন্ময় স্বরূপ শুদ্ধ পরম মধুর পরম সুন্দর সর্বগুণ সম্পন্ন যাহা দিয়ে যোগ্যতা আছে जे जन भजन करे छे सेई रकम कृष्ण सेवा उपयोगी से सकिता पेटा सिद्धांत से प्रभुपाद बोले छे गुरु महाराजो भालो करे बुझो सहजिया राम ने करे यही खाने भेद यही सरिता चिन्मय তাহলে বুড়ো হয়ে ওখানে একটা লোক কৃষ্ণের কি সেবা করবে? বুড়ো লোক জর্জর রোগেতে জর্জরি দাড়ি গোফ নিয়ে কিরকম করে যদি এই শরীর হয়ে যায়? এই জন্য সামঞ্জস্য করে গুরু বৈষ্ণবরা যেরকম বলেছেন ওইটা গ্রহণ করে আমরা চল। সহজিয়ারা মনে করে সহজিয়ারা মনে কি করে এই শরীর চিহ্ন হয়ে যায় না, তখন পুরুষ লোক নাকেতে নোল পরে আর সেন্দুর লাগায় আর ললিতা সখী কবি নোল দিতে এরকম দেখা যায় আর আরো সব লোক দেখা যায়। এই শরীরকে মনে করে যে সে এই শরীর দ্বারা গোপি হয়ে আমি ভজন এটা কখনো করতে পারি। ট্রান্সলেশন
So this subject matter is very deep. In the same way that the bee goes to the flower to taste honey, in the same way the bee like Sanak, who has no other desire, goes to the wish-fulfilling creeper of Prem Bhakti to taste that Prem. Therefore that bee like Sanak takes shelter of Prem Bhakti. Therefore a question may come that Bhakti is the Swarup Shakti of Bhagwan. She is composed of Sachidananda. But the Jivatmas in this world, the Sadaks, they have bodies of stool and urine. Therefore, how they can taste a transcendental thing? Also, there is a difference between matter and consciousness. Consciousness cannot become matter. Matter cannot become conscious. Therefore, then how the sadhak will taste bhakti if all these considerations are there? The sadhak has a material body which is unconscious. How he can taste bhakti which is supremely conscious? Therefore, the example is given. Atasya Krishna Namadi Nambhavad Graya Vindriya Seva Mukhi Hijiva No Swayameva Spuridiyada. Just like there is one jewel called a sparsha mani. If you touch that to a piece of iron, then that iron becomes gold. How does it happen? It happens by the inconceivable potency of the sparsha mani jewel. It dispels the iron quality in the piece of iron, and then it becomes gold. In the same way, the senses of the sadhak are like iron. But when touched by the sparshamani of Sudabhati, which is Sachidananda, then the material qualities of the senses are dissipated and the senses become tadatmik with bhakti, one with bhakti, and they also become Sachidananda moya. Therefore, by forming Shravan and Kirtan of Krishna's name, form qualities and pastimes, with a mood of seva, sevan mukha hi jiva do, beginning with the tongue, by taking shelter of the guru, guru padasraya, then taking diksha, then performing the limbs of bhakti under the guidance of guru, then by performing sudasadhan, performing sadhan in a pure way without material desires. If you're not practicing sadhan, then no question of this happening. Then, The material qualities of the senses are dissipated and the senses become tadatmik with bhakti, and then they can taste Sachidanandamayi Bhakti Devi. Therefore, we have Bhagavatamrita has said, discussed, at the stage of Rati, Bhava Bhakti, that time this material body consisting of earth, water, fire, air and ether becomes Chinmoy, transcendentalized. By drinking the amrit of bhakti, then the jivatma, the sadak, he forgets his material conception of himself. And the Sachidanandamoy, Siddhadeha, inside the jivatma's spiritual body, manifests. Imam Prata Swapriyanama Kitya Jatanu Raga Druta Chitti Uche. This verse is discussed there. Then I'll step on the witness. Therefore, it may appear some confusion. My translation point will not help that. Therefore, we are hearing Vaishnav Deha Prakrit Kabunoi. Mahaprabhu said to Sri Sanatana Goswami, the body of a Vaishnav is never to be considered material. Also, Dikshikali Bhakta Kari Atma Samapan Se Kari Krishna Kari Atma Sam. When we take initiation at the time of initiation, when we completely surrender to Krishna, at that time the sadhak receives a spiritual body the same as the Lord. Therefore, that conception is given. But really, Guru Maharaj asking about the form of the Guru. We see some old ages there, the beard is becoming white, some disease is there. Therefore, question comes. What Guru is saying, no? But that sadhak, right? He's become Chinmoy, like he just said those two verses. Then when we see old age is coming, beard is coming, grey, some disease is there, then can this body go to Goloka Vrindavan? That was the question. That is the question. Therefore, how you can reconcile these two things? Guru Maharaj said this body cannot become Chinmoy. This body cannot become Sachidananda. Therefore, the history is given by Narad Muni. Narad Muni, he took diksha from his guru, he took mantra, etc. He left home and went to the forest and was performing bhajan. At that time, Bhagavan appeared like a flash. So now that you cannot have darshan in this body of yours, when you leave this body, then you can, when you develop more, then you can have my association. Therefore, Narad Muni did not go to Vaikuntha in that body in which he was situated. He left, it's a Bhagavatam describes, that body of five elements he left, and in that Siddhadeha, Sachidananda Deha, the internal Sarup, in that body he went to Goloka Vrindavan. Therefore, the Siddhadeha goes there to the spiritual world, not the body of five elements. Therefore, have we taken Diksha? Diksha Kari Bhakta Kari Atma Samarpan. We hear at the time of Diksha, we get a transcendental body. But have we really taken Diksha? Where's the quality of our surrender? We hear in Jiva Dharma that Vijay and Rajanath, when they took Diksha from their Gurudev, immediately they became unconscious and saw Gaur Nityananda Prabhu dancing before them. But that did not happen to me. Therefore, we have taken anusthanik diksha. We say some formal, some entered the school of diksha, some formal diksha was there. This formality of taking mantra from Guru, this gives the quality, the qualification for a future attainment of some spiritual wealth. Therefore, the sahajas think, oh, this material body can become spiritual. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur described all these things in a very strong way. Therefore, the sahajas think this body can become transcendental. Therefore, they put kajal, nose ring, shave five times a day, put color in their hair and say, I become Lalita Sakhi. But this is completely ridiculous, how a body of stolen urine can become Lalita Sakhi. Therefore, we should understand that inside this body, there is a very sweet, eternal, Siddhadeya, eternal perfected form, that form goes to Radha Krishna or wherever seva is necessary and goes there to perform seva, not this body of stolen urine. That's what Gurudev said, I'm not putting my own.
ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ. So Srila Gurudev has ordered me to discuss the understanding of two shlokas from Chaitanya Charitamrita, which are the topic that we have been discussing here. I'm not so familiar with these. Can you remind me? Diksha Kale
Kare Atma Samarpanam.
Yes, Diksha Kale.
Sri Kali Krishna Kare Kare Atma Samarpanam. Sri Dehtar Kare Chidananda Maya Aprakita Dehe Krishna Charanam.
So, Diksha Kale means at the time of Diksha. When a devotee, when a disciple receives Diksha from Guru, when a disciple receives Diksha from Guru, this is what is being referred to here. But actually, what is the definition of Diksha? Diksha Kale, the time of attaining Diksha. We have just heard Srila Gurudev has explained and given the example from Jiva Dharma of Rajanath and Vijay Kumar. So these two personalities, when they receive Diksha from their Gurudev, immediately they have transcendental experience of their own spiritual forms and the form of their Gurudev. And as was just now explained, we, in our reception of Diksha from Guru, this has not been our experience. Therefore, this is called anusthanik Diksha. That it is not on the level of this transcendental Diksha. What is the actual meaning of Diksha? Divya jnanam tatoda yat kuryan papasya samshayam tata dikshayati sa prakta deshikais tatpako vidai. This verse is explaining that the word Diksha consists of two syllables, D and Ksha. So D refers to divyam jnanam, transcendental knowledge, transcendental realization. Realization of what? Realization of my own spiritual form. Realization that my Gurudev has his eternal spiritual form, his eternal relationship with Krishna. What is my relationship with Krishna? All this type of transcendental knowledge is called Divya Jnanam. And Kuryat Papasya Samshayam. When this chain of repeated pap means sinful activities and karma, which are binding the soul, the jivatma, to this material body and to the succession of repeated births and deaths, when this is completely removed and burnt up by the performance of Shuddha Bhakti, then at that time, Diksha becomes attained. So we can say that we have been allowed entrance into the school of Diksha. But actually, Diksha is when one has completed the entire course and has attained, like his diploma, at the end of attending university. So in this way, one attains these two things, Divya Jnanam and the complete removal of all sinful activities and past karmas. So Krishna accepts the devotee at the time of Diksha, Atma Samarpan. It describes here that Krishna is accepting the devotee equal to himself. at the time of Diksha. So that actual Diksha time, which is being referred to in this verse, is when Krishna, when the devotee has attained this level of Diksha. Then he becomes qualified actually to attain his aprakrita deha, his transcendental spiritual body, and to go to the spiritual world. But prior to that, he will experience swarup siddhi, in which he is aware, although he has not yet transferred there to the spiritual world and attained the vastu siddhi, taking birth in the pastimes of Krishna in this material world, but he has attained swarup siddhi at the stage of vrati, at the stage of bhav, then that devotee realizes his eternal spiritual form and his and all of the qualities and designations of that eternal spiritual form. And then in that way, the devotee constantly meditates upon the pastimes of Krishna, chanting his holy name, evam pratak svapriyana akirtya jatanurago durdachitta ucchaya. He's constantly absorbed in chanting the names of the Lord and remembering his pastimes, and he gradually loses even his awareness and consciousness of this material body and becomes qualified to transfer to the spiritual world.
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णवर्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराज ने प्रश्न किया है कि प्रथम केवल दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसाप, सही देह करे तार चिता न दबाए, अपराकृत देह कृष्ण चरण सेवाए। यह चैतन्य चरितामृत का ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जीव का वास्तव स्वरूप भजन स्वरूप की वर्णना कर रहे हैं। जब कोई जीव श्री गुरुपाद पद्मों का चरण आश्रय ग्रहण करता है, अभी अभी हम श्रवण कर रहे थे जो दीक्षा शब्द, दीक्षा दो तरह का है। एक दीक्षा तो जो आनुष्ठानिक दीक्षा जिसको साधारण व्यक्ति ग्रहण करते हैं, एक दीक्षा है विद्वद्रोही दीक्षा जो वास्तव दीक्षा करते हैं। अभी अभी हम श्रवण कर रहे थे दीक्षा का मतलब होता है दीपम ज्ञानम जत दद्यात् पुरज्यात् पापम संस्कयात्। दीक्षा मतलब होता है जब जीव को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो। अभी दिव्य ज्ञान है क्या चीज? अभी साधारण रूप में जीव समझता है ये शरीर मैं हूं और ये शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। लेकिन दिव्य ज्ञान किसे कहते हैं? दिव्य ज्ञान वह है जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तत्वतः हम ये संसार का कोई वस्तु नहीं, तत्वतः जो जीव है वो कृष्ण का नित्यदास है। और नित्यदास नदी जो दिव्य ज्ञान है, अभी शिष्य के अंदर में वास्तव क्या स्वरूप है, इसलिए महाराज में बता रहे थे जब जीव को आसक्ति अवस्था होता है, आसक्ति अवस्था में अंकुर जीव के अंदर में जो स्वरूप था, जो उसका सिद्ध स्वरूप है, किसी सख्य रूप में हो, वात्सल रूप में हो, श्रृंगार रस में हो, उसका किस किसी अवस्था में प्रकट होता है, तो अंकुर केवल आसक्ति अवस्था में वो अंकुर होता है। फिर धीरे धीरे आसक्ति के बाद भाव भावावस्था में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो बात बताए वहां पर कभी कभी भगवत कत प्रेम का कली अवस्था भाव है हम लोग श्रवण करेंगे। हाँ, कली अवस्था में उसी समय साधक कभी भगवान की चरण की नुपुर की झलकार को सुनता है, कभी भगवान की बंसुरी की सुंदर सुंदर आवाज सुनने को मिलता है, कभी कभी भगवान जब उसको स्पर्श करते हैं उसका शरीर कभी कभी रोमांचित हो जाता है, कभी कभी वो अपना वो होठ कोई लहर चाटने लगता है मानो भगवान उसको कुछ अमृत पिला करके गए, कभी उनका वस्त्र की तिब्बत छटाए उनका आभूषण की छटाए और भगवान का शरीर का जो तिब्बत प्रकाश कभी कभी उसको दिखाई पड़ता है, ये भावावस्था में। लेकिन जब प्रेमावस्था में कहते प्रेमावस्था में ही संपूर्ण उसको दर्शन है, जो जिस रस में उपासना करता है उसी रस का अनुरूप प्रभु उसको दास्य सत्य वात्सल मधुर अनुरूप उसको अपना संग प्रदान करते हैं। इसलिए दीक्षा वास्तव दीक्षा क्या है, वास्तव दिव्य ज्ञान क्या है, वास्तव दिव्य ज्ञान वह है जब जीव संपूर्ण अपना आत्म स्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो जाए। जैसे महाराज जब उदाहरण दे रहे थे कैसे बाबा महाराज के पास में कैसे दीक्षा मंत्र लेते हैं और दीक्षा मंत्र लेते ही वो अपराकृत दीप धाम श्री श्वेत दीप का दर्शन कर रहे हैं, कैसे वहां पर सूर्य उदय हो रहे हैं, कैसे शंकर आज ब्रह्मादि कैसे हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, कैसे वहां पर सब सचिनंदन गौर हरि बोल कर जय गौरी कर रहे हैं, संपूर्ण रूप में दिव्य अपराकृत जो दिव्य मायापुर धाम को सब दर्शन कर रहे हैं, सबके सब दर्शन कर रहे हैं। इसलिए दीक्षा उससे कहते हैं जब वास्तव रूप में जीव को यह स्थिति आए तभी उसको दीक्षा कहते हैं। इसलिए उसी समय क्या अवस्था क्या होता है, सही काल कृष्ण कर आत्मसम, उसी समय वो आत्मसम होता है। और एक महाराज बात बताए कहते सही देह कर चिदानंदमय अपराकृत देह कृष्ण चरण से भय। यहाँ पर बहुत सारी मेरा अंदर में ही बहुत बहुत शंका था आज दूर हो गया है, मैं तो यही सोच रहा था यही सर्दी से आज अपराकृत हो जाता है, आज ये बहुत बड़ी मेरी की शंका दूर हो गई। इसलिए महाराज प्रश्न उन्होंने अपना गुरु जी की बात बताए, कुछ कुछ लोग उदाहरण से देखे ध्रुव का शरीर छोड़ना पड़ा ही नहीं, उन्होंने इसी शरीर को द्वारा ही काल को सिर पर चरण रख करके उन्होंने भगवत धाम को गए हैं इसी शरीर को द्वारा, लेकिन हमको दिखता है जैसे इसी शरीर को द्वारा है लेकिन तत्व तो बात नहीं है, हम लोग अपना जड़ दृष्टि को द्वारा विचार नहीं कर सकते। महाराज बहुत अच्छे उदाहरण दिया, अगर यही शरीर अगर अपराकृत तत्व को प्राप्त करता है चिन्मय तत्व को प्राप्त करता है लेकिन ये शरीर तो इसमें दस तरह का विकार है, जाते बरतते करते करते नष्ट हो जाता है, ये शरीर तो टाटी पेशाब खून जाके फैल गए, ये शरीर कैसे अपराकृत कैसे हो सकता है, ये कैसे चिन्मय तो हो सकता है, ये शरीर तो नश्वर शरीर है। लेकिन शास्त्र ने बताया वैष्णव शरीर अपराकृत सदा, अपराकृत सदा
जय हिंसा निंदा,
हाँ जय निंदे हिंसा करी भक्ति विनोद नाशम भास तारे भाके सदा मौन धरी। भक्तिम ठाकुर कहते हैं वैष्णव चरित्र वैष्णव का शरीर हाँ वो अपराकृत सदा वो दिव्य है, लेकिन अभी प्रश्न होता है अभी महाराज बता रहे जिससे हमारा शरीर केस बन गया, शरीर बुढ़ापा हो गया और सारे चमड़ा ढीली बन गए, यही शरीर क्या अपराकृत हो गया, प्रश्न होता यही शरीर क्या अपराकृत और यही शरीर को द्वारा कि हम जा करके प्रभु की दिव्य सेवा को इसी शरीर को द्वारा प्राप्त करेंगे, ये तो शरीर नश्वर है जागरण हो गया है, ये शरीर तो दरकत नहीं, ये शरीर नहीं तत्वतः उसका जो आत्मस्वरूप है, हाँ आत्मस्वरूप है। अगर हम बोलेंगे या हम जो वैष्णव का भी जिस स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं ये स्वरूप क्या अनित्य है, अपरा नित्य नहीं अनित्य, ये स्वरूप जिस स्वरूप का दर्शन करते हैं क्या यह स्वरूप तो नित्य है, लेकिन हम क्या ये जड़ चक्षु को द्वारा वैष्णव को क्या दर्शन कर सकते हैं, प्रश्न होता है हम जिस स्वरूप करें हम ये जड़ चक्षु को द्वारा क्या वैष्णव को स्वरूप को दर्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमारा इतना शक्ति नहीं जो कि वैष्णव का वास्तव स्वरूप को हम दर्शन कर सकते, ये जड़ नेत्र को द्वारा हम दर्शन भी नहीं कर सकते, अपराकृत वस्तु है। इसलिए तत्व तो हमारा उदाहरण दिया जैसे नारद ऋषि। नारद ऋषि जब उन्होंने साधन भजन की, साधन भजन करने पर उनको एक झलक दर्शन मिला। जब उनको एक झलक दर्शन मिला, प्रभु का एक झलक दर्शन करके जैसे उनको जेठ के महीना की जैसे प्यास किसको हो, मानो किसने ला करके एक घूंट उनको कोई शरबत पिला करके मुंह से हटा ले, ऐसे ही एक झलक दर्शन करते ही वो तो व्याकुल हो गए। प्रभु का दर्शन करने के लिए हृदय दिव्य उत्कट था जगह का, उसमें आकाश वाणी हुई अभिपक को कसाया ना दुर्दशा अहम पूजोगिना। इसलिए अभिपक को कसाया, अभी तुम्हारा अंदर में कुछ कसा है, कुछ दोष है, इसी स्थिति में संपूर्ण रूप में मेरा दर्शन नहीं होता। अभी साधन भजन करो, फिर उसको बाद में दर्शन मिलेगा। फिर इसे साधन भजन करके जब मुझे प्रलय आता है, उसी समय उन्होंने नेपति पंचवती का शब्द आता है, उन्हें पंचवती शरीर को उन्होंने पतन हुआ छोड़ा। फिर उनको प्रभु ने फिर ब्रह्मा जी का पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते, नारद ऋषि रूप में वहां पर जन्म ग्रहण करके पुनः उनको फिर राधा रानी की आशीर्वाद से उनको फिर राधा जी की फिर बिना ही प्राप्ति होती है, राधा जी के दर्शन प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने दिव्य शरीर को प्राप्त करते हुए सर्वत्र उन्होंने भगवान का गुणगान लीला को दान करते रहते हैं। इसलिए वैष्णव का जो शरीर है, हाँ, यहाँ पर ये सब विचार है, मेरे समझ में जितना आया मैं कितना बोला हूँ, इसलिए आज भी मेरे अंदर में बहुत श्रद्धा को दृढ़ हो गया है। श्रद्धा को
हरे कृष्ण। ये सब साधु संघ महाराज जी का संघ किया तो उठा।